नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सीबीआई की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुए कोटखाई दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस महानिरीक्षक सहित 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा है कि भारतीय मोबिलिटी बाजार वर्ष 2030 तक दोगुना हो जाएगा और 600 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर जाएगा। गजा में इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता भारतीय समयानुसार आज दोपहर 12 बजे से लागू होगा। और नई दिल्ली में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने खो खो विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। चंडीगढ़ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2017 के कोटखाई दुष्कर्म और हत्या मामले में 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में 2017 में हुए दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में हाईजी जहूर हैदर जैदी सहित 8 पुलिसकर्मियों को चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इस मामले में सजा पर फैसला 27 जनवरी को होगा। दोषी करार देने के बाद पुलिस ने आईजी जहूर हैदर जैदी सहित 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि गवाहों के बयान व सबूतों के अभाव में नामजद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि आरोपी सूरज की गुड़िया हत्याकांड की 14 दिन बाद कोटखाई थाने के लॉकअप में हत्या कर दी गई थी। राजकुमारी चंदेल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
भारतीय मोबिलिटी उद्योग के वर्ष 2030 तक दोगुना होने और 600 अरब अमरीकी डॉलर को पार करने की संभावना है। थिंक टैंक गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक, शेयर्ड और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे उभरते राजस्व क्षेत्र इस उद्योग में वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान कर सकते हैं, जबकि अधिकांश राजस्व नए इंटरनल कमीशन इंजन आईसीई की बिक्री सहित वाहनों, वित्त और बीमा जैसे क्षेत्रों से आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता, वाहन की अधिक लागत, बैटरी की लाइफ और मॉडल को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 80% लोगों में इंफोटेनमेंट, रियल टाइम पार्किंग सहायता, चोरी रोकने जैसी सुविधाओं की भारी मांग है, जबकि रिमोट कंट्रोल जैसे विश्व स्तर पर लोकप्रिय सुविधाओं की मांग अपेक्षाकृत कम है। गजा में इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 12 बजे से लागू हो जाएगा। इससे पहले कल इसराइली सुरक्षा कैबिनेट ने गजा संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी। समझौते में इसराइल की जेलों में बंद फलस्तीन के कैदियों के बदले में हमास के कब्जे में इसराइल के दर्जनों बंधकों की रिहाई और 15 महीने से चल रहे संघर्ष का अस्थायी विराम शामिल है, लेकिन संघर्ष विराम लागू होने से कुछ घंटे पहले ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा युद्ध विराम समझौता अस्थायी हो सकता है और इसराइल के पास गजा संघर्ष फिर शुरू करने का अधिकार है। उन्होंने हमास में आज पहले चरण में रिहा होने वाले 33 बंधकों की सूची देने को कहा है। इन बंधकों में बच्चे, महिलाएं और 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं। इसराइल हमास द्वारा रिहा किए गए प्रत्येक महिला इसराइली सैनिक के बदले में फलस्तीन के 50 कैदियों और अन्य महिला बंधकों के बदले में 30 कैदियों को रिहा करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 7,72,00,000 से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ से समूचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
महाकुंभ की यात्रा के बाद देश विदेश से आए श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट जैसे पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु तपन रे ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि प्रयागराज से उन्होंने अयोध्या और वाराणसी समेत कुछ अन्य पवित्र स्थलों पर भी जाने की योजना बनाई है।
जो व्यवस्था है पूरा कुंभ में लगा बहुत ही बढ़िया है। मैं लोकल प्रशासन जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जितना सुव्यवस्था करने के लिए। लोग आराम से दर्शन किए हैं।
श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के इन स्थानों पर आने से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है, साथ ही यात्रा, आतिथ्य और परिवहन क्षेत्र के कारोबार में भी वृद्धि हुई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सहायता से निर्मित जाफना के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखे जाने का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये भारत तथा श्रीलंका के बीच लोगों के प्रगाढ़ सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों का परिचायक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। गृहमंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। NDRF विश्व में सबसे बड़ा बल है जो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र के सिद्धांत के साथ अपनी आपदाओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री 220 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडा पवुलुरु में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस नए परिसर में शिक्षा और आपदा से निपटने की प्रशिक्षण सुविधा होगी और इससे आपदा के दौरान किसी की जान न जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। गृहमंत्री विजयवाड़ा में NDRF की 10वीं बटालियन परिसर और बिहार के सुपौल में 9वीं बटालियन के क्षेत्रीय आपदा केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। श्री शाह हैदराबाद में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक नए अत्याधुनिक एकीकृत इंडोर शूटिंग रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बुढ़ल तहसील में रहस्यमय बीमारी से प्रभावित बधाल गांव का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालय दल के गठन का आदेश दिया है। इस गांव में पिछले 6 हफ्तों में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन AIPOC कल पटना में होगा।
19-20-21 जनवरी को देश भर के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में आयोजित है। यह सम्मेलन 43 साल के बाद बिहार में हो रहा है और इसमें विभिन्न राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सचिव भाग लेंगे। पूरी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी करेंगे और साथ में राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरवंश जी उपस्थित हमेशा रहेंगे। कार्यक्रम का समापन बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा होगा और इस पूरे सम्मेलन की तैयारी के लिए व्यापक रूप से योजना बनाई गई है और योजना पूरी हो रही है।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय कार्य व्यवहार और प्रक्रिया पुस्तक के 8वें संस्करण का लोकार्पण करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव महमूद अहमद और परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा शामिल होंगे। आमंत्रित विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा तथा हितधारकों, नागरिकों और सरकार का सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके योगदान से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर कल रात 9:30 बजे से पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289-094044 पर तथा सोशल मीडिया साइट एक्स पर #AskAIR के साथ भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई में हुए हमले के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने मुख्य अभियुक्त विजय दास को मुंबई के पास ठाणे से गिरफ्तार किया है। सैफ अली खान के बांद्रा स्थित आवास पर चोरी की कोशिश में एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला किया था। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में आज उनका मुकाबला नेपाल से होगा। भारत के गौतम एमके को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सचिन भार्गव को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक घोषित किया गया। गौतम एमके ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके प्लान बी ने जीत दिलाने में मदद की।
टफ फाइट टू अस, दे प्लेड वेरी वेल, सो देन वी गॉट सम पुश फ्रॉम द कोचेस, वी आर नॉट ऑन द प्लान, सो वी हैव टू बी द प्लान बी, सो देन वी ब्रॉट दैट प्लान बी एंड वी एग्जीक्यूटेड दैट एंड वी वेल प्लेड एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ इट्स अ गेम बिलोंग्स टू द इंडिया।
उधर भारतीय महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद महिला टीम की कोच सुमित भाटिया ने कहा कि भारतीय टीम फाइनल खेलने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है।
तीन इंजर्ड हुए उनके प्लेयर और वो रफ एंड टफ खेल रहे थे, इसलिए हमने अपना स्ट्रेटेजी चेंज करी और सेफ एंड पे चले गए। उनके वजीर को भी इंजर्ड हुआ, उनके अटैकर भी इंजर्ड हुए, डिफेंडर भी इंजर्ड हुए, तो हमने फिर अपने को सेफ कर लिया कि हमें फाइनल में जाना, क्योंकि लीड आ चुकी थी हमारे पास, तो हम रिलैक्स हो गए और हमने थोड़ा गेम को स्लो कर दिया।
समूचे उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में धुंध और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 जनवरी तक यथावत मौसम बना रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने बांटे 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। पत्र के अनुसार योजना से लोगों को ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में होगी मदद। जनसत्ता ने विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के इस कथन को प्राथमिकता दी है कि आतंकवाद का कैंसर पाकिस्तान में अपनी ही राजनीतिक संरचना को खो रहा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, भारत में 30% नियोक्ता बदलना चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया। पत्र के अनुसार खत्म हो रहा डिग्री का महत्व, कौशल से ही मिलेगी नौकरी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, अब वर्षों का इंतजार नहीं, कुंभ में बिछड़ों को मिनटों में मिलवा रहा है एआई। पत्र लिखता है, कुंभ आयोजन में एआई का इस्तेमाल, अपराध प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के काम में हो रहा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सीबीआई की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुए कोटखाई दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस महानिरीक्षक सहित 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप। गाजा में इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता भारतीय समयानुसार आज दोपहर 12 बजे से लागू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।